कल आप लोगों के समक्ष श्री भरत के चरित्र का वैशिष्ट्य गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में प्रकट करने का कुछ प्रयास किया गया था। उनकी पहली स्थापना यह कि यदि श्री भरत न होते तो जो दुस्साध्य साधनाएं दिखाई देती हैं, इन साधनाओं को जीवन में उतारा जा सकता है, इसका विश्वास लोगों को नहीं हो पाता। फिर साथ ही यह भी कहते हैं कि मुझ जैसा सठ भगवान श्री राम के पाद पद्मों की ओर उन्मुख नहीं हो पाता। यदि भरत जी का जन्म न हुआ होता तो दूसरी स्थापना उनकी यह है कि जो फल आप भगवान श्री राम के कीर्तन के गायन और श्रवण से पाएंगे, आप वही फल श्री भरत के चरित्र के श्रवण से प्राप्त करेंगे। तीसरी स्थापना उनकी यह है कि यह जो श्री राम का वन गमन हुआ, वह एक रावण नामक व्यक्ति के वध के लिए नहीं हुआ, बल्कि वह तो श्री भरत के हृदय में जो दिव्य प्रेमामृत भरा था उसको प्रकट करने के लिए हुआ। और चौथी स्थापना यह है कि भरत अपने को प्रभु के हाथों में यंत्र मानते हैं, वे कठपुतली जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, वे छाया है, प्रभु व्यक्ति है, छाया की अपनी कोई इच्छा नहीं हुआ करती। ऐसे ही श्री भरत हैं, सर्वतो भावेन अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, आपने भरत चरित्र इतना महान बना दिया, ऐसा लगता है कि क्या हमारे जीवन में वह व्यावहारिक हो सकता है? गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, और यही उत्तर आज से लगभग 100 वर्ष पहले यहीं पर दक्षिणेश्वर में दिया गया है श्री राम कृष्ण परमहंस के द्वारा। किसी ने उनसे पूछा, महाराज आपका जीवन चरित्र एक अत्यंत ऊंची अट्टालिका के समान है जिसे देखने से सिर चकराने लगता है, फिर हम क्या सीख सकते हैं आपके जीवन से? उनके जीवन में अद्भुत काम त्याग था, अद्भुत कंचन त्याग था, कामनी साथ थी, पति पत्नी दोनों एक साथ एक बिस्तर पर एक कमरे में 6 महीने तक सोते हैं, पर कभी तो किसी में देह बोध उठा, यह विलक्षण, यह घटना बहुत दूर नहीं घटी और काल में भी वह बहुत दूर नहीं घटी, अभी अभी की घटना, आपके ही इस स्थान की घटना, श्री राम कृष्ण के वेदांती गुरु तोतापुरी ने कहा था, देख बेटा तुझे मैंने वेदांत का अभ्यास करा दिया, मैंने सुना है कि तेरी पत्नी अपनी पत्नी से दूर रहकर के वेदांत का अभ्यास करने वाले तो मिलते हैं, पर जब तेरी पत्नी तेरे पास होगी फिर भी तू उसमें केवल आत्मबोध ही करेगा, तब तेरे वेदांत ज्ञान की परीक्षा हो। श्री रामकृष्ण ने परीक्षा दी देह बोध नहीं है, न तो श्री रामकृष्ण में है न श्री शारदा में, विलक्षण त्याग इतना है कि भूल से भी यदि कंचन का स्पर्श होता है तो एकदम बिच्छू के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। किसी ने पूछा, महाराज आपका जीवन इतना उदात्त भव्य अट्टालिका के समान और कीर्ति का त्याग? कल हम लोग कह रहे थे भरत राम ही की अनुहारी, भैया भरत देखने में श्री राम के समान, कितना सौंदर्य न रहा होगा। श्री राम कृष्ण कितने सुंदर थे इसकी कल्पना उनके जीवन चरित्र को पढ़ने से मिलती है, विलक्षण सौंदर्य। अभी जो उनके छाया चित्र मिलते हैं वहां तो दाढ़ी है, बेतरतीब बाल बढ़े हुए हैं, सौंदर्य कुछ दिखता नहीं, पर जिस समय युवा थे ऐसा अद्भुत सौंदर्य, बिल्कुल जिसे कहते हैं तप्त कंचन का वर्ण लेकर के उनकी यह देह। मां शारदा कहा करती थी कि जो वे ताबीज बांधते थे सोने की, उसका रंग उनकी देह के रंग से मिल जाया था। यह विलक्षण सौंदर्य, ऐसे सौंदर्य मान पुरुष घटना पढ़ते हैं कामारपुकुर की, बहुत भीड़ है। उनके जन्म स्थान में श्री रामकृष्ण आए हैं कलकत्ते से, अपने भांजे और सेवक हृदय राम से पूछा, अरे हिदू भीड़ किसकी है, इतने लोग हैं? मामा तुम्हें देखने के लिए। मुझे देखने के लिए? मुझमें क्या विशेषता है? मामा सचमुच तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें देखने के लिए सब लोग आए हैं, मुझे देखने के लिए? कहां लोग भगवान को देखेंगे, हार मांस की देह को देखने के लिए आए हैं, कितने अविवेकी हैं रे। श्री राम कृष्ण मानो बाहर नहीं निकल रहे। हृदय राम कह रहे हैं, चलो मामा थोड़ी देर बाहर निकल जाओ, लोग देख तो ले। और मैं मानो अपने आप से ही कह रहे हैं, छी छी इस मल भांड को देखने के लिए आए, कैसी बुद्धि है उनकी, कहां सौंदर्य के आगर उस मां को देखें, परमात्मा को देखें, जगन माता को देखें। और जब भीड़ हटती ही नहीं तो उन्होंने कहना शुरू किया कि देख रहे थे तू, फिर दोष नहीं देना, इन सब से बोल दे कि यहां से वे लोग चले जाएं, नहीं तो मैं कपड़ा फेंक करके नंगा हो जाऊंगा। विलक्षण कि सौंदर्य बोध, और सौंदर्य बोध के प्रति कितना मानो त्याग का भाव, कुछ नहीं चाहिए, कीर्ति नहीं चाहिए। तभी तो भक्त ने पूछा कि महाराज आपका जीवन भव्य अट्टालिका के समान, देखते हैं तो सिर चकराने लगता है, क्या सीखे? कहा उन्होंने, मैंने सांचा बना दिया है रे, सांचा तैयार कर दिया है, अब तुम लोगों की जितनी शक्ति है उस सांचे के अनुसार अपना जीवन गढ़ लो। यही उत्तर गोस्वामी जी का भी है कि भरत का चरित्र इतना महान, ऐसा लगता है कि ऐसी महत्ता हमारे कुछ काम आ सकती है या नहीं आ सकती। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने सांचा तैयार कर दिया, अब इस सांचे में जितना संभव हो सकता है अपने जीवन को ढालने का प्रयास कर लें। ऐसा न कहें कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता, यही बताने के लिए भरत का जन्म हुआ है कि ये सारी बातें जीवन में उतारी जा सकती हैं, ऐसा जीवन बन सकता है, मनुष्य अपने को भगवान के हाथ में यंत्र स्वरूप मान सकता है। मानो यही दिखाने के लिए श्री भरत का जन्म होता है। यह गोस्वामी जी की बहुत अद्भुत स्थापना है, और इसी कारण चूंकि भरत पृष्ठभूमि में रहना चाहते हैं लोगों को भ्रम हो जाता है, लक्ष्मण वैसे नहीं, उनमें तेजस्विता है, वे अपने श्री राम के प्रति प्रेम को दबा नहीं सकते, उनके प्रेम में उत्कटता प्रखरता, पर भरत छिपाते हैं। जैसे दोहावली रामायण में संकेत दिया गया है। सरयू तीर पर खेल खेलना था। अब खेलने के लिए दो दल बनेंगे, तब तो दो दल बनेंगे तो एक एक दल में सदस्य होंगे, तो जो ही दल बनेंगे और खेलने वाले सदस्यों का चुनाव होगा कि श्री लक्ष्मण जाकर के श्री राम के पास खड़े हो जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं तो प्रभु की ओर से खेलूंगा, विरोध पक्ष में यदि खेलने के लिए कहो तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं दर्शक बना रहूंगा, यदि खेलूंगा तो प्रभु की ओर से खेलूंगा। श्री भरत की भी भावना उसी प्रकार की है, पर लक्ष्मण के समान अपनी भावना को प्रकट नहीं कर पाते हैं, वे छिपा करके रखते हैं, दबा करके रखते हैं। और जिस समय लक्ष्मण तो जाकर के प्रभु के बाजू से खड़े हो गए, अब क्या करेंगे, खेल तो होना ही है। और प्रभु देखते हैं श्री भरत की ओर, वे कहते नहीं हैं कि भरत तुम विरोधी पक्ष के नेता बनो, आंखें ही मानो कह देती हैं। प्रभु ने देखा, भरत ने समझ लिया, जाकर के वे विरोध पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अब ये जो दर्शक हैं, अयोध्या के पुरवासी हैं, वे तो यही समझते हैं कि हरदम भरत विरोध पक्ष का चुनाव करते हैं, जबकि लक्ष्मण है जो प्रभु की ओर से खेलते हैं, और भरत है ये हरदम विरोध पक्ष का नेतृत्व करते हैं। मनुष्य क्रिया को तो देख सकता है, भावना को कैसे देख। हम क्रिया को तो देखते हैं, पर भावना को देखने का कोई यंत्र हमारे पास नहीं है। तो अयोध्या के पुरवासी भी भरत की भावना को क्या पहचान, कि उनके हृदय में श्री राम के चरणों के प्रति प्रेम का कितना बड़ा ज्वार उमड़ रहा है, वे तो नहीं देख पाते हैं। वे तो यही देखते हैं कि भरत जाकर के विरोध पक्ष में खड़े हो गए, खेल शुरू हो गया है, बस यही वे देखते हैं। यही हम पढ़ते हैं और सुनते हैं और यह विचार करते हैं और देखते हैं कि भरत की सबसे बड़ी त्याग की भावना निहित है। किसी ने कहा भरत से, क्यों आप भी तो लक्ष्मण जी के समान प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मैं क्या हरदम विरोध पक्ष में खेलूं, एक बार तो मैं आपकी तरफ से खेलना चाहता हूं। यह लक्ष्मण बारंबार जाकर के प्रभु के पास खड़े हो जाते हैं। भैया भरत में किसी प्रकार की ईर्ष्या वृत्ति ही नहीं, यह भी विलक्षण बात कि दो भाई हों, इस प्रकार का आचरण हो तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ईर्ष्या की वृत्ति आ ही जाती है। किसी को यदि अधिक अपनापा मिले तो दूसरे के मन में थोड़ा न थोड़ा भेदभाव तो पैदा हो ही जाता है। भरत देखते हैं लक्ष्मण हरदम प्रभु के साथ हैं। लोगों ने भरत से कहा कि देखिए आप भी तो प्रभु से कह सकते हैं, यह जो लक्ष्मण का हठ है उचित नहीं है। क्या कहते हैं, वे लक्ष्मण की निंदा नहीं करते, बल्कि लक्ष्मण के प्रति उनका प्यार और भी बढ़ जाता है। कहते हैं वे, लालन जोग लखन लघुनो ने भेन भाई अस अहनी न होने। वे तो लालन के योग्य हैं, छोटे भाई हैं, और ऐसा छोटा भाई न तो कभी हुआ था और न तो कभी किसी को प्राप्त होगा। वे तो केवल प्यार ही प्राप्त करने के पात्र हैं। अद्भुत है भैया यह लक्ष्मण, इनके समान भाई नहीं मिल सकता। विलक्षण ईर्ष्या वृत्ति का अभाव कि प्रभु का कितना ख्याल करते हैं लक्ष्मण, कितनी बड़ी सेवा करते हैं। ठीक है, और इसीलिए यह उचित है कि श्री लक्ष्मण को प्रभु का संग हरदम प्राप्त होता रहे। क्यों आपको नहीं, मोहि अनुचर करके तिकबाता, मैं तो एक अनुचर हूं सामान्य सा, और अनुचर की अपनी कोई इच्छा तो नहीं होती, वह तो स्वामी जैसा चाहे अनुचर वैसा करता है। तो बस प्रभु की जैसी इच्छा है, उनकी इच्छा में ही मेरी इच्छा भी निहित है। तो भरत जी क्या मानते हैं कि प्रभु का खेल हो, संपन्न हो, मुझे विरोध पक्ष से ही क्यों न खेलना पड़े। प्रभु भले ही मुझे संकेत देते हो कि भरत तुम विरोध पक्ष से खेलो, क्योंकि लक्ष्मण तो मेरी तरफ से खेलना चाहता है, भरत को इसमें कोई आपत्ति नहीं। यद्यपि हृदय में भावना उतनी ही प्रबल है जितनी प्रबल लक्ष्मण के हृदय में कि मैं भी प्रभु की ओर से खेल पाता, पर जब प्रभु ने संकेत दे ही दिया तो भरत को प्रभु के हर संकेत में, उनकी हर क्रिया में गुण ही गुण दिखाई देता है। वे तो यही मानते हैं कि प्रभु ने यह जो संकेत दिया कि विरोध पक्ष से खेलो, यह तो मुझ पर बड़ा उपकार किया। किसी ने पूछा कि कैसे उपकार किया, लोग तो आपको गलत समझ लेते हैं, इसमें उपकार की क्या बात आई। कहा कि नहीं, प्रभु ने मेरी भावना को ठीक समझ लिया, यदि मैं प्रभु की ओर से खेलता तो उनके शिव मुख के दर्शन नहीं हो पाते, इसीलिए कहा कि भरत तुम विरोध पक्ष से खेलो तो प्रभु सामने बने गए, हर समय मुझे शिव मुख के दर्शन होते हैं, यह लाभ तो प्रभु ने कृपा करके मुझे ही दिया है। तो भरत प्रभु की हर क्रिया में उनकी कृपा देखते हैं अपने प्रति, यह बड़ी विलक्षणता है। और इसीलिए तो वे तो कहते हैं, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूं पर को भनकाऊ, मैं प्रभु कृपा, जहां पर वे कह मोह पर कृपा सने विशेखी, खेलत खुन सन कब हूं देखी, शिशुपन ते परिहर मुन संगू, कब हुन कीन मोर मन भंगू, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, हारे खेल जिता वही मोह। यह भी भरत की भावना, क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि मैंने प्रभु को समझ लिया, उनके स्वभाव को मैं जानता हूं, वे तो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, तो मैं विरोध पक्ष को लेकर के खेलता हूं, क्या प्रभु इसलिए मुझ पर क्रोध करते हैं? बिल्कुल नहीं, मुझ पर तो उनकी कृपा और उनका स्नेह विशेष है, यह मैं हृदय से अनुभव करता हूं। कभी भी खेल में भी उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त नहीं की, वैसे सामान्य व्यवहार में कभी लिप्त हुए। अब कितने भी प्रेमी, जैसे हम दो बहुत एक दूसरे को चाहते हैं, ताश का खेल खेल रहे हैं और अचानक मेरे सामने जिसको जो मेरा अत्यंत प्रिय भाजन है गलत ताश खेलता है, मैं उससे तो हो ही जाता हूं, क्या खेलते हो, दिमाग नहीं है तुम्हारा, यह तो मैं कह ही देता हूं। पर भरत कहते हैं कि खेल में भी कभी प्रभु मुझ पर रुष्ट नहीं हुए, अप्रसन्नता व्यक्त नहीं की, शिशुपन से ही तो साथ हूं, कभी भी मेरे मन को तोड़ा नहीं, मैं उनकी कृपा की रीति को जानता हूं। क्या है कृपा की रीति, हारे हूं खेल, वैसे तो मैं हारता हूं खेल में, हार ही जाता, परंतु वे मुझे जिता देते हैं और मेरा मन कभी तोड़ते नहीं, क्या विचित्र बात। विचित्रता क्या है, यह तो ठीक है कि भगवान श्री राम हार जाते हैं और भरत जीत जाते हैं, पर श्री भरत कहते हैं कि वे मेरा मन तोड़ते नहीं, वे मुझे जिता देते हैं, जिता करके मेरा मन नहीं तोड़ते हैं, तो क्या हरा देने से उनका मन टूट जाता, यही तो लगता है। क्या भरत यह कहना चाहते हैं कि यदि प्रभु मुझे हरा देते तो मेरा मन टूट जाता, ऐसा नहीं, यहां पर हार जीत का प्रश्न नहीं है, यहां पर भावना का प्रश्न है। प्रभु हार जाते हैं तो भरत को ऐसा लगता है कि प्रभु का कितना अगाध प्रेम मेरे ऊपर, वे हार स्वीकार कर रहे हैं, और कैसे हार स्वीकार करते हैं, गीतावली में प्रसंग आता है कि खेल खेला जा रहा है, राम लखन एक ओर भरत रिपु दमन लाल एक ओर भय, सरज तीर सम सुखद भूमि थल गनी गनी गोइया बाँच लए। सरयू के अत्यंत तो सुंदर और सम ऐसे तीर पर दोनों दलों ने गोटियां बांट ली, अपने अपने गण बांट लिए, सहचर बांट लिए, अब उसके बाद खेल शुरू हुआ। कंदुक केली कुशल है चढ़ी चढ़ी मन कसी कसी ठोकी ठोकी खे कर कमल विचित्र चौगाने खेल न लगे खेल रिझई खेलते हैं। यहाँ पर हॉर्स पोलो का जिक्र है, घोड़े पर चढ़ करके गेंद का खेल खेला जा रहा है। यह कब की बात है? इतना ही मान लें कि जब गोस्वामी जी ने लिखा तभी की बात होगी। इसका मतलब है कि हॉर्स पोलो तब भी था, यह अभी की बात नहीं। तो घोड़े पर खेल बैठते हैं कुशल अश्व, कुशल है चढ़ी चढ़ी, बहुत कुशल है ये घोड़े, और चढ़ करके उस पर ये खेल खेलते हैं। तो कहते हैं कि कर कमलन विचित्र चौगाने खेलन लगे खेल रिझई हारे खरस हो तही भर तही जिते सकुच सिर नयन नये तुलसी सुमिरी सुभावशील सुकृति तेजे एही रंग रही। कहते हैं कि तुलसी तो धन्य हो रहा है इस खेल को देख करके। तो यहां पर भावना क्या है? प्रभु को पहले चांस दिया गया कि आप गेंद पर प्रहार कीजिए, आप कीजिए, और प्रभु ने गेंद पर प्रहार किया। उन्होंने तो धीरे से प्रहार किया, और जब गेंद भरत जी के पास आती है उन्होंने खूब जोरों से उस पर प्रहार किया। अब देखने वाले क्या देखते हैं? उनको लगता है कि प्रभु ने तो खेल खेलना चाहा और उन्होंने धीरे से प्रहार किया, और भरत जी जीतना चाहते इसीलिए उन्होंने बहुत जोरों से प्रहार किया। अब उसके बाद देखा गया कि जब गेंद प्रभु के पास गई तो प्रभु उस पर प्रहार नहीं कर पाते हैं, और इस असमंजस में उनका दांव छूट जाता है, और दांव छूटने के कारण वे हार जाते हैं। घोषणा कर दी जाती है कि श्री भरत जीत गए, और बड़ा आनंद होता है। अब इसके पीछे का तत्व क्या? लोगों में गैर समझ तो हो गई, लोगों ने सोचा कि भरत जीतना चाहते हैं खेल को इसलिए गेंद पर जोरों से प्रहार करते हैं। पर तात्पर्य अद्भुत आध्यात्मिक तात्पर्य गोस्वामी जी का संकेत, वे कहते हैं कि प्रभु ने भेजा, गेंद पर प्रहार किया, और भरत जी ने जोरों से गेंद पर प्रहार किया, यह कहकर कि अरे अभागे गेंद तू प्रभु के पास था और प्रभु का निकट ना निकट के छोड़ करके तू मेरे पास आता है, यह तू कैसा है? अत्यंत दुर्भाग्य है, प्रभु को छोड़ करके जो जीव के पास आए वह तो प्रहार करने ही योग्य है, और ऐसा मान करके वे जोरों से प्रहार करते हैं कि जा तू प्रभु के ही पास रह, तेरा कितना बड़ा सौभाग्य था कि तू प्रभु के पास पहुंच गया था, पर दुर्भाग्य है कि तू उनको छोड़ करके आ रहा है इसीलिए प्रहार करते हैं। और जिस समय गेंद प्रभु के पास आई उन्होंने सोचा संत भरत यह सौगात भेज रहा है, अब इसे तो स्वीकार करना ही उचित है, अगर संत भरत का यह सौगात स्वीकार न करो तब तो भक्ति के क्षेत्र में यह दोष है, और इसीलिए प्रभु स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं माने असमंजस में पड़ते हैं, वे प्रहार नहीं कर पाते, और फल यह होता है कि भैया भरत जीत जाते हैं प्रभु हार जाते हैं। तो वही कहा एक कहत भई हारी राम जुकी एक कहत भैया भरत जय पाई सखा सेवक जाचक भरी जन्म न दूसरे द्वार गए। अत्यंत हर्षित हो गए प्रभु और भरत जी भी अत्यंत हर्षित, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि प्रभु ने भावना को पकड़ लिया, भरत की जो भावना थी उसको प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए भरत हर्षित, और भरत के हर्ष को देख करके प्रभु हर्षित। अब यह जो अद्भुत इन दो प्रेमियों का खेल है इसको तो दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं, वे तो यही सोचते हैं कि हार जीत का खेल चल रहा है, और जब भैया भरत जीते तो उनकी जीत की खुशी में प्रभु ने सब कोष खुलवा दिया, जिसने जो मांगा उसने वही प्राप्त किया। तो तुलसी ने कहा कि मैं भी वहां था, किसी ने तुलसी से पूछा कि तुलसी जी आप तो ऐसा लिखते हैं जैसे सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इसमें संदेह क्या है, मैं भी वहां था। अच्छा आप भी वहां थे, तो फिर आपको भी तो कुछ मिला होगा कोष में से। तुलसी ने कहा कि मुझे भी मिला। तो क्या मिला? अरे भाई, जिसने जो मांगा उसको प्रभु ने वही दिया, तो मैंने भी एक चीज मांगी और प्रभु ने कृपा करके मुझे वह चीज दी। तुलसीदास तह जानी सो अवसर भगति दान बर मांगी। सो अवसर देखा तुलसी ने, प्रभु से भक्ति का वरदान मांगा और कृपा करके प्रभु ने भक्ति का वरदान दे दिया। तो यह गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि और यह भरत जी के चरित्र का उन्नयन व भाव की लीला, भाव का खेल, यह हदम हमारे समक्ष रखना चाहते हैं कि यह है जिसको हम कहेंगे। और ये कैसे थे ये जो भरत जी थे? अपने भाव को छिपाने वाले, बाह्य चेष्टाएं ऐसी लगती थी, लोग देखकर के सोचते थे कि ये श्रीराम के विरुद्ध जा रहे हैं। जैसे वह एक घटना जिसमें ऐसा संकेत देखा जाता है कि शायद प्रभु के वनगमन में श्री भरत का हाथ है। विवाह हो गया, जनकपुर से लौट आए, प्रसंग कहता है कि उसके बाद भरत ननिहाल गए और तब तक नहीं लौटे जब तक प्रभु का वनगमन नहीं हो गया और महाराज श्री दशरथ की मृत्यु नहीं हो गई। तब उसके बाद खबर भेजी जाती है और श्री भरत शत्रुघ्न लाल के साथ वापस आते हैं। यह हम पढ़ते हैं कितना बड़ा अंतरा कि विवाह हुआ, उसके बाद जो चले गए ननिहाल में, लौट करके नहीं आए। कुछ लोग ऐसा स्पर्श टीका करते हैं कि भरत जी का कोई संकेत रहा होगा, इसीलिए इतनी दूर इतने लंबे समय तक के लिए वे अयोध्या से बाहर गए। पर बिल्कुल उल्टी बात, भरत जी बिल्कुल उल्टा ही करना चाहते थे। जैसे भरत जी जानते थे जिस समय अंबा कैकेयी का विवाह महाराज श्री दशरथ के साथ हुआ, कुछ विचित्र परिस्थितियों में हुआ। कैकेयी नरेश ने कुछ शर्तें रखी और प्रमुख शर्त यह थी कि कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र होगा वही इस अयोध्या के राज का उत्तराधिकारी होगा। और हम यह पढ़ते हैं कि महाराज दशरथ ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। श्री भरत जानते थे, अब उनके जीवन में यह बहुत बड़ा द्वंद्व है। एक तो महाराज श्री दशरथ वचन बांध गए और फिर दूसरी बात यह है कि यह जो सूर्यकुल की परंपरा रही है वहां पर तो ज्येष्ठ को उत्तराधिकार मिलता है। यह द्वंद है श्री भरत के जीवन में, इन दोनों को कैसे करके कहां पर समन्वित किया जाए वे समझ नहीं पा रहे। और इसीलिए बहुत प्रारंभ से श्री भरत ऐसी चेष्टा करते हैं कि कैकेयी अंबा का सारा स्नेह श्री राम की ओर जाए। वे तटस्थ रहते हैं, वे अपना अधिक समय कौशल्या अंबा के पास बिताते हैं। कौशल्या अंबा भी श्री राम के समान ही भरत को चाहती हैं, पर कैकेयी अंबा के साथ तो विलक्षण बात यह होती है कि वे श्री राम को भरत की अपेक्षा अधिक चाहने लगती है, क्योंकि भरत ने तटस्थता बरती। वे कौशल्या के पास रहते और श्रीराम कैकेयी अंबा के पास रहते, तो कैकेयी अंबा को श्रीराम के प्रति अधिक अपनत्व की अनुभूति होती। यही चाहते थे भैया भरत, और इसीलिए यहां पर इस प्रकार से खेल खेलते रहे। पर जब विवाह हो गया और श्रीराम ने शिवजी के धनुष को तोड़ दिया जनकपुरी में जाकर के, तो उनका नाम यश बहुत बढ़ गया। श्री भरत ने सोचा यहां अयोध्या की बात तो मैं मना लूंगा, पर ननिहाल की बात कैसे मनाऊंगा? वे तो सशंकित हो गए हैं, जब से श्री राम ने शिवजी के धनुष को तोड़ा है। तो इसलिए भरत जी ने सोचा कि ननिहाल के लोगों का आना जाना कैसे कम करें। वे बार बार अयोध्या में आते हैं, कैकेयी जी को स्मरण दिलाते हैं। तो इसीलिए सोचा भरत जी ने कि ठीक है, यहां तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, मैं ननिहाल चला गया। वे ननिहाल गए और वहां मामा को आने नहीं देते। जब श्री भरत जी वहां है तो मामा क्यों आएंगे? तो वहीं पर रह करके मानो भरत जी की चेष्टा यह है कि जो अयोध्या के लोग हैं, माता कैकेयी हैं, ये सब भरत जी को भूलते जाएं, श्री राम का चरित्र ही उनके सामने उज्जवल रूप से आ जाए, जिससे किसी भी प्रकार उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर के झगड़ा ही ना हो, यह उनकी भावना।
कितनी उदात्त भावना है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस भावना को प्रकट करते हैं। तो यह जो ननिहाल में इतने समय तक रहना था, तो भरत के हृदय का भाव यही था